ओम शांति। आज बाप दादा की वरदानी भूमि में, बाप दादा की इस अलौकिक फुलवाड़ी में, बाप दादा का एक ऐसा ही अमूल्य रत्न हमारे बीच है। मुंबई से, बोरीवली से श्रेया बहन जी आज हमारे बीच पधारे हैं। एक बहुत सुंदर विषय है जिसके ऊपर श्रेया बहन अपने विचार व्यक्त करेंगे, कार्मिक मेन्यू। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि कर्मा जो है, यू डिजर्व, यू आर सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व, कर्मा हैज नो मेन्यू। तो ये जो मेन्यू है, आहारिका जिसको कहेंगे, कार्मिक मेन्यू, इसके विषय में श्रेया बहन अपने विचार व्यक्त करेंगे। वैसे तो श्रेया बहन जी को सभी जानते हैं, पीस ऑफ माइंड टेलीविजन पर जिंदगी बने आसान और हिंदी में, और लाइट ऑफ नॉलेज, इसमें बहुत सारे एपिसोड्स श्रेया बहन जी ने दिए हैं। और लौकिक में वैसे तो बचपन से ही आध्यात्मिक वातावरण में पले बड़े हैं, वर्तमान समय बोरीवली में रहते हैं। और एक बहुत सुंदर समागम है अध्यात्म का और बुद्धि का। लौकिक में ये बीए ऑनर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, और पहले वेब रिपोर्टर भी रहे हैं एनडीटीवी में, ब्रिटिश काउंसिल में एजुकेशनल कंसल्टेंट रहे हैं। हमारी जो अन्नमलाई यूनिवर्सिटी है और ब्रह्मा कुमारी इसका कोर्स है, उसमें एमएससी किया है और उसमें कुछ रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किए हैं जिसका विषय था कि वेरियस राजयोगा टेक्निक्स क्या है और राजयोगा मेडिटेशन का डे टू डे लाइफ में किस तरह अप्लाई किया जाए। और वैसे भी सारे देश भर में बहुत सारे वर्कशॉप, बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर्स, कॉरपोरेट सेक्टर्स में इनके लेक्चर्स, क्लासेस होते रहते हैं वेरियस डाइवर्स टॉपिक्स, जैसे हेल्दी रिलेशनशिप से लेकर तो कार्मिक विजडम से लेकर तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, एंगर मैनेजमेंट, इस तरह से बहुत सारे ढेर विषयों पर इन्होंने अपने लेक्चर्स, प्रवचन दिए हैं। तो आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रेया बहन जी हमारे बीच में है, और एक बहुत सुंदर विषय जो कि कहा कार्मिक मेन्यू, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। एक बहुत सुंदर लाइन हमको याद आ रही है, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, नॉट ए सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। व्यक्ति को जो भी मिल रहा है वो वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। तो कर्मा हैज नो मेन्यू, यू डिजर्व, यू आर सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व। तो पोर टू श्रेया बहन जी, ओम शांति।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। इस ग्रुप के बारे में बहुत सुना है, परंतु आने को पहली बार मिला, वो भी अनायास ही कल शांति स्तंभ के पास सचिन भाई से मिलना हुआ। और मैं उनको पूछ रही थी, क्योंकि परसों रात उनकी क्लास अटेंड की थी, मैंने कहा आपकी कोई और क्लास होने वाली है दोबारा? तो कहते हम तो रोज मिलते हैं सुबह, और इस कारण से ही फिर देखो अचानक इस सुंदर फुलवारी से मिलना हुआ। तो पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अमृत वेले के बाद तुरंत जो बाबा कहते हैं मनन चिंतन करना, मनन चिंतन भी करते हैं, और भले ग्रुप देखने में छोटा कहेंगे परंतु आपकी जो बातें मैं समझती सारे देश में, विदेश में मीडिया के माध्यम से पहुंचती है और अनेकों इसका लाभ भी ले रहे हैं। जो टॉपिक कल मुझे दिया, वहीं पर खड़े खड़े जो भाई ने सुनाया, कर्मा हैज नो मेन्यू, यू आर सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व। क्या लगता है आपको, कर्मा का कोई मेन्यू है कि नहीं है, कि वो ही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं? मैं जब इस पर सोच रही थी तो मुझे लगा कि कर्मा का तो बहुत बड़ा मेन्यू है, डेस्टिनी का मेन्यू नहीं है। कर्म का तो इतना बड़ा मेन्यू है कि हर समय बाबा कहता है बच्चे सोच समझ करके सोचो, बोलो, करो, ये कर्मा का मेन्यू है। किसी भी सीन में गुस्सा करना है, शांति से रहना है, बात को पकड़ के रखना है, बात को छोड़ देना है, नफरत करनी है, रहम करना है, ये सब चॉइस है। कर्म का तो मेन्यू है और हर सेकंड हम चूज करते हैं कि क्या करना है, लेकिन जो एक बार कर देते हैं वो जो लौट करके आता है, बाबा के शब्द में बाबा कहेंगे बच्चे वो भाग्य है, फिर वो तकदीर है। परंतु जो शब्द कहा कि आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, परंतु वो भी किसने चूज किया है? आज जो डिजर्व कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं बहुत अनकॉन्शियसली कहे, कॉन्शियसली कहे, जाने अनजाने में चूज तो हमने ही किया है। परंतु बाबा ने बहुत सुंदर हमको कर्मों की फिलॉसफी समझाई है। बाबा कई बार कहते हैं कर्मों की गुह्य गति बहुत डीप है, ये कई बार समझता नहीं है, क्योंकि मैं समझती ज्ञान में आने से पहले हम सभी को लगता था कर्म वो है जो हम करते हैं, परंतु बाबा ने बताया कर्म वो नहीं है जो हम सिर्फ करते हैं। कर्म की शुरुआत कहाँ से होती? सोच से। एक्चुअली उससे भी थोड़ा सा गहरा है, सोच तो है ही, उसमें भी बाबा कई बार कहता है कि किसी के बारे में गलत सोचना, निंदा करना या पर चिंतन करना भी हिंसा है। ये तो किसी ने नहीं समझाया था, कितनी बड़ी बात। हिंसा भी लगता था बस फिजिकल वायलेंस है, पर किसी के बारे में गलत सोचना भी बाबा कहते उसके लिए जैसे यहां से एक तीर मारा और वहां जाकर उसको लगता है, और सिर्फ उसको नहीं लगता, उसको एक बार ही लगता है, आपको दो बारी, क्योंकि जब सोचेंगे तो भी वो लगेगा, उसको पहुंचेगा, उसको दुख देगा, लौट करके आएगा दो बारी, उसको एक बारी जख्मी करेगा, आपको दो बारी। परंतु अगर कर्म को थोड़ा सा और गहराई से सोचे तो केवल सोच तक भी नहीं, मानो कोई ऐसा कर्म करता है, एक हॉस्पिटल बनाता है और उसमें काफी बड़ा डोनेशन करता है, इसको कौन से खाते में डालेंगे? श्रेष्ठ कर्म के खाते में? कौन से खाते में जाएंगे? ये एक बड़े हॉस्पिटल में कोई बड़ा डोनेशन देता है तो कैसा कर्म है? ये पुण्य कर्म है ना। परंतु अगर इसके पीछे उसका भाव ये था कि अगर इतना बड़ा डोनेशन देंगे तो थोड़ा नाम मान शान मिलेगा, हॉस्पिटल की दीवार पर मेरा नाम होगा, शायद हॉस्पिटल का एक विंग ही मेरे नाम से चलेगा, अब ये कर्म कौन से खाते में जाएगा? आधा पुण्य। तो बाबा ने जो श्रेष्ठ कर्म, जो हाईएस्ट लेवल का कर्म बताया, उसमें इंटेंशन की भी प्योरिटी है। मन कर्म की शुरुआत कहां से होती? इंटेंशन। वो कर्म करने के पीछे हमारा भाव क्या है, फिर वो कर्म कर्म नहीं रह जाता है, मैं समझती फिर वो कर्म सेवा हो जाती है, चाहे वो लौकिक में हो, अलौकिक में हो, सेंटर में हो, कहीं पर भी हो, फिर उसको कर्म नहीं सेवा के खाते में गिना जाएगा। इसलिए यहां पर भी जो हम सेवा करते हैं, क्यों बाबा उसको कर्म योग कहता है? क्योंकि सेवा के पीछे बहुत सारे पीछे के स्टेप्स हैं। आज कई लोग सेवा करते हैं तो भिन्न भिन्न कारण बताते हैं सेवा करने की, कि हम सेवा करते हैं हमको बहुत खुशी मिलती है, हम सेवा करते हैं दुआओं का खाता जमा होता है, हम सेवा करते हैं क्योंकि बाबा ने ये सब्जेक्ट बनाया, कि बात तो सब ठीक है। परंतु बाबा ने सेवा के पीछे आप देखो पहला शुरुआत होती वैराग्य, वैराग्य के बाद अव्यक्त मुरली स्टडी करते हैं ना, बाबा ने कहा सबसे पहले चाहिए वैराग, फिर चाहिए त्याग, फिर चाहिए तपस्या, फिर होती है सेवा, उससे बनता है भाग्य। क्योंकि कर्म और भाग्य की बात चल रही है ना, कौन से कर्म से बनता है भाग्य? जिस कर्म के पीछे पहले वैराग है, फिर त्याग है, फिर तपस्या है। क्योंकि उस सेवा के अंदर बहुत सुंदर इंटेंशन है केवल देने की, उसमें कुछ भी लेने का भाव नहीं है। नहीं तो बहुत सेवा आजकल आप दुनिया में देखेंगे उसके अंदर जो भाव है वो लेने का है, कहीं मान का, नाम का, शान का। मुझे एक बात जानकी दादी की कभी भूलती नहीं है, दादी ने एक बार ही कहा था कि कभी भी अपनी मन की स्थिति को सेवा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना। तो दादी को पूछा कि दादी ऐसे कैसे हो सकता है, सेवा तो हमारा जीवन है, सेवा के बिना हम करेंगे क्या? सेवा से ही तो हमको खुशी मिलती है। और दादी ने कहा सेवा के ऊपर मन की स्थिति डिपेंडेंट नहीं करना, क्योंकि सेवा में कभी तो बहुत मान मिलता है तो कभी कभी बहुत सहन भी करना पड़ता है, कभी बहुत सफलता है तो कभी आप कितनी भी मेहनत कर लो कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, बहुत कुछ। सेवा एक ऐसा क्षेत्र है। फिर बहुत सुंदर बात दादी ने कही, देखो एक होता है मूलधन और दूसरा होता है उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज, एक है कैपिटल दूसरा है इंटरेस्ट। दादी ने कहा सेवा से जो खुशी मिलती है वो क्या है? इंटरेस्ट है। और जीवन इंटरेस्ट के ऊपर नहीं चलती है, जीवन किसके ऊपर चलती है? कैपिटल, मूलधन। तो मूलधन हमारा कहां से मिलेगा? सेवा से नहीं। जो कैपिटल है वो कहां से आएगा? त्याग तपस्या। एक बाबा दूसरा ना कोई, ये जब फाउंडेशन बहुत पक्की होंगी तो सेवा के क्षेत्र में जब आएंगे तो कुछ भी लेने की भावना नहीं होगी, देने की भावना होगी। जब कोई कहता है कि सेवा करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, ये ठीक नहीं है। वास्तव में सेवा करते हैं खुशी लेने के लिए नहीं, लेकिन खुशी देने के लिए। और जब फाउंडेशन में होगा एक बाबा दूसरा ना कोई और अंदर से बहुत ज्यादा भरे हुए होंगे, तो फिर जब सेवा के क्षेत्र पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन में भी आएगा उसको कुछ ना कुछ महसूस होगा। तो बाबा ने तो जो कर्म सिखाए वो बहुत ऊंचे और श्रेष्ठ। मैं बैठी थी तो मुझे याद आ रहा था कि बाबा ने जब ओम निवास स्कूल बनाया था तो दादियां सुनाती हैं कि बाहर एक ब्लैक बोर्ड पर बाबा ने उस स्कूल के तीन नियम लिखे थे। किसी को पता है वो तीन नियम क्या थे? स्कूल के बाहर बाबा ने कहा इस स्कूल में जो भी पढ़ना चाहता है उसको ये तीन नियम फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें पहला नियम था, आपको वंडर लगेगा, ऐसा स्कूल आपने कहीं नहीं देखा जहां ऐसे नियम होंगे। उसमें पहला नियम था इस स्कूल में रोना मना है। इस स्कूल में रोना मना है, ये श्रेष्ठ कर्म बाबा ने सिखाया। बात सुनने में बहुत छोटी है परंतु बाबा ना हंसी हंसी में और खेल खेल में बहुत ऊंची बातें सिखा देता था। अगर ये धारणा करनी है कि रोना मना है तो आप देखो कितनी शक्तियां और गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मेहनत एक चीज पे करनी है कि रोना नहीं है, क्योंकि बाबा कई बार कहता था तुम कोई विधवा हो जो रोएंगे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। ये बात पहली बार बाबा ने तब कही थी जब बाबा की खुद की पत्नी ने शरीर छोड़ा था, और उसके बाद तो ये नियम ही बन गया। दूसरा नियम था इस स्कूल का, न दुख देना है न दुख लेना है। संसार में ये श्रेष्ठ कर्म तो सुना है कि दुख देना नहीं है, कहते बहुत बड़ा पुण्य का कर्म है सुख देना। ये कर्म कभी सुना दुख लेना नहीं है? बाबा ने कहा अगर आपने दुख लिया ये भी पाप कर्म है, दुख लेना भी पाप कर्म है। हमको लगता था दुख देना पाप कर्म है, बाबा ने कहा दुख लेना भी पाप कर्म है, दुख लेना भी नहीं है, कोई दे तो भी आपको लेना नहीं। और तीसरा कर्म जो बाबा ने, तीसरा नियम जो स्कूल का था, प्योरिटी, अन्न की शुद्धि, तन की, मन की। और कल तो बाबा ने कहा बच्चे जो पवित्र नहीं रहता वो बेकार है, बाबा के किसी काम का नहीं है। बाबा के जो मददगार बच्चे हैं उनके लिए सबसे जरूरी है प्योरिटी। इस प्रकार से बाबा ने तीन नियम बनाए। और ये मैं समझती जैसे बाबा उनको श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहा था, और इस कर्मों के आधार पर ये जो एनर्जी बाहर रेडिएट होती ये फिर लौट करके आती है। ये जो लौट करके आती है इसको कहेंगे भाग्य, तकदीर। इसका कोई मेन्यू नहीं है, इसमें आप चूज नहीं कर सकते। दुनिया में ये लाइन कई बार कहते हैं, आपने सुना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो उनको इग्नोरेंस ब्लिस कब तक लगती है? जब कर्म करना है तब नहीं, सत्य नहीं जानना चाहते, सत्य पर चलना नहीं चाहते, इग्नोरेंस इज ब्लिस। कब उनको ब्लिस नहीं लगती है? जब वो चीज लौट करके आती है। तब आप देखो हर एक कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब वो चीज लौट करके आ रही है फिर तो ये प्रश्न ही नहीं है कि क्यों होता है, फिर तो वो ही मिलना है जो आप, अब ये बात आती है कि यू विल बी सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व, क्योंकि वो एनर्जी भेजी थी। इसलिए बाबा कहता है जब लौट करके आ रहा है तब नहीं सोचो, जब कर रहे हो तब सोचो। परंतु बाबा ने हमको फिर टाइटल दिया जो कर्मों से जुड़ा है, त्रिकालदर्शी का। त्रिकालदर्शी का टाइटल का मतलब ही है कि पास्ट प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है और प्रेजेंट फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। जो पास्ट में किया था वो आज प्रेजेंट बन गया है, जो पास्ट में एनर्जी भेजी थी आज वो प्रेजेंट है, वो हमारा प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट में एनर्जी भेजेंगे वो हमारा फ्यूचर बन जाएगा। ये भी बाबा ने समझ दी कि जाने अनजाने में 63 जन्मों का बोझ भी सर के ऊपर है। ये ज्ञान बाबा ने क्यों दिया? अब जब भी कोई बात सामने आती है, कोई भी सीन, परिस्थिति, बीमारी, कोई भी पुराना संस्कार, कोई भी संबंध संपर्क जो डिस्टर्ब करता है, बाबा कहते क्यों क्या नहीं करो। यहां पर पहली पॉइंट जब भी कोई बात आती है सबसे जरूरी है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करे। स्वीकार करते ही आधा दर्द तो वैसे ही निकल जाता है, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ मेरे साथ, कैसे हो सकता है। बातें भी तो बहुत बड़ी बड़ी आती है ना, कई ब्राह्मण हमको बोलते हैं सेंटर पर और सब स्थानों पर, पता नहीं आपको भी महसूस होता है कि नहीं, कई सारे कहते हैं ज्ञान में चलने से पहले इतने पेपर नहीं आते थे ज्ञान में चलने के बाद और जितना जितना साल बढ़ते जाते हैं पेपर भी बढ़ते जाते हैं। ऐसा अनुभव है किसी का? किस किस का, जरा हाथ का सभी का है। ऐसा क्यों होता है? वंडरफुल बात है, और तो भी हम बाबा को छोड़ के नहीं जाते हैं। पहले विद्यार्थी नहीं थे, अभी विद्यार्थी बने तो अच्छी बात है। पेपर क्यों बढ़ जाते हैं हमारे? पेपर तो आएंगे। हाँ जी, हमको कॉन्शियसनेस होती है कि वो पेपर है, पहले नहीं थी। जिनों को नॉलेज नहीं है उनों के सामने पेपर नहीं आते, क्योंकि ये लॉ तो ऐसा इटर्नल है, आपको पता हो या ना हो ऐसा थोड़ी ना। जिसको कर्मों का ज्ञान है वो लॉ को अपने फायदे के लिए यूज कर लेता है। अब उसको समझ में आ गया जैसा भेजेंगे वैसा लौट करके आएंगा, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिसको इस लॉ के बारे में पता नहीं है उसके साथ ये लॉ काम नहीं कर रहा है। संसार में भी सबके सामने थोड़े पेपर आ ही रहे हैं, हमारे सामने स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। क्यों ऐसा? अटेंशन रहता है, जल्दी जल्दी खत्म करना है क्योंकि हम ही तो बाबा को रोज बैठकर सुबह कहते बाबा मुझे पतित से पावन बनाओ। आप डॉक्टर के पास जाकर कहेंगे ना कि मुझे बीमार है ट्रीटमेंट करें। कभी कैंसर के पेशेंट को देखा है? वो कैंसर उसको जब तक डिटेक्ट नहीं होता ना वो ठीक लगता है, जैसे ही डिटेक्ट होता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है
तो मूर्ति बन नहीं सकती, बिना तराशे तो हीरे की चमक निकलती नहीं है। तो जैसे हम भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सामने आने लगती हैं। बाबा मुरली ने कई बार कहता है डरो मत, निर्भय बने। जो भी बातें आती हैं इस समय पर आप जैसे स्वीकार करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि हर पेपर आत्मा की शक्ति बढ़ाने आता है। बाबा जो शब्द कहता है ना कि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, और कभी कभी हमको उसके अंदर का कल्याण दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि बात ही ऐसी होती है इतनी बड़ी बीमारी है, कोई तो शरीर भी छोड़ देता है उसमें, कोई बिजनेस में बहुत लॉस हो जाता है। पर सबसे बड़ा कल्याण जो इस समय है, हम इस समय आत्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने की मेहनत कर रहे हैं। बाबा का लक्ष्य है आत्मा को शक्तिशाली बनाना, इसलिए भिन्न भिन्न बातें आएंगी, कोई सहन शक्ति बढ़ाने के लिए, कोई सामना करने की शक्ति, कोई कोई शक्ति। जितना पेपर को स्वीकार करके अंतर्मुखी होकर के देखेंगे आप रियलाइज करेंगे वो कुछ सिखाने आया है। इसलिए बाबा कहते हैं उसको तूफान नहीं समझो, उसको क्या समझो, तूफान। इसमें पक्का एक स्पिरिचुअल जंप होगा, इसमें पक्का कुछ रियलाइजेशन होगी। इसलिए कर्मों की गोई गति के साथ ड्रामा का ज्ञान बहुत गहराई से जुड़ा है। ये ड्रामा का ज्ञान है सिर्फ जो बाबा देता है, इसलिए थोड़ा सा हमारा ज्ञान दुनिया के ज्ञान से क्यों अलग है? बाबा ने आधी मध्य अंत का ज्ञान दिया है, किंतु एक बात का हमेशा ध्यान देना, ज्ञान में आने के बाद बहुत लोग ड्रामा को पहले यूज करने लगते हैं। ड्रामा इमरजेंसी डोर है और इमरजेंसी डोर कब खोला जाता है? सबसे लास्ट में खोला जाता है। पहले अगर सारे दरवाजे खुलते हैं तो वो खोलना है। कोई भी बात सामने आती है पहले सारे दरवाजे खोले। पुरुषार्थ बाबा कहता है फर्स्ट है, पुरुषार्थ भी किया, मेहनत भी की, जो कर सकते थे किया, उसके बाद बाबा कहते ड्रामा गलत नहीं है, एक्यूरेट है। फिर एक बार एक ने मुझे पूछा बहुत सुंदर सवाल, कहा जब भी कोई बात आती है अगर बात ठीक हो जाती है प्रॉब्लम परिस्थिति तो हम कहते देखो बाबा की कितनी मदद मिली है, और अगर किसी कारण से बहुत योग किया, ज्वालामुखी योग भी किया, सब 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 किया, लेकिन वो बात चेंज नहीं होती है तो फिर हम कहते हैं ड्रामा। तो कहते ये क्या है, बाबा की मदद है कि ड्रामा है? नहीं होता है तो आप कहते तो ड्रामा है, एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, और हो जाता है तो कहते हैं मदद है। तो क्या है वास्तव में? हाँ जी, ड्रामा का याद आना भी मदद है। बहुत अच्छा, और क्या कहिए? दोनों ड्रामा है। मैंने जिस समय सीन चेंज नहीं होती माना बाबा मदद नहीं कर रहा है। एक बहन तो कुछ साल पहले हमारे पास आती थी, उनकी माता जी बहुत बीमार थी। किसी ने उनको कहा 21 दिन का योग करो, किसी ने कहा भोग लगाओ, किसी ने कहा फलाना फलाना। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग सब के पास पहुंच जाते हैं, परंतु ड्रामा में सीम ऐसी थी कि सब कुछ करने के बाद भी उनकी माता जी ने शरीर छोड़ दिया, वो ज्ञान छोड़ के ही चली गई। उसने कहा मैंने सब कुछ किया, ऑनेस्टली किया, सिंसियरली किया, तो भी मुझे बाबा ने मदद नहीं करी। बाबा ने हमको योग इसलिए लगाने के लिए नहीं कहा है कि हम बैठ बैठ के योग लगाएं और इस स्मृति से लगाएं कि ये करेंगे तो यहाँ ये ठीक हो जाएगा। एक्चुअली में बाबा ने कहा योग लगाओ स्थिति बनाने के लिए, कि पहाड़ जैसी बात भी आपको राई लगे, रोई लगे, आप फूक मार के उड़ा दें। योग स्वस्थिति बनाने के लिए है। योग बैठ बैठ के इस चिंतन से नहीं कि योग करेंगे 21 दिन एक मास तो वहां कुछ चेंज हो जाएगा। ये जरूरी है और होता भी है कि कई बार हमारी ऊंची दृष्टि, वृत्ति, स्मृति से वहां परिवर्तन आने लगता है। दृष्टि हमारी ही प्रोजेक्शन है, कॉज जैसा होगा वैसे ही इफेक्ट होगा, लेकिन अगर योग ही उस इंटेंशन से करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो सीन 100% परिवर्तन होंगी। इसलिए जब भी योग में बैठे ऊंची स्थिति बनाने पे कि जो भी सीन ड्रामा के आए उसको स्वीकार कर सके, उसको पार कर सके और मन में कोई भी हलचल नहीं हो। जब बात ठीक हो जाती है और हम कहते कि बाबा ने किया, वो इसलिए कि हमको अभिमान नहीं आए, और अगर किसी कारण वो सीन नहीं परिवर्तन होती बाबा ने कहा वो एक्यूरेट है, हलचल में नहीं आए, उसलिए बाबा ने कहा ड्रामा, यहाँ फुल स्टॉप लगाओ, ये एक्यूरेट है, ये क्या सिखाने आया है, इसमें से सीख करके आगे बढ़ो। सारा पर्पस जो बाबा का है, बिंदी लगी रहे और बिंदी बाप से हम जुड़े रहे। और लास्ट में जो मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, कर्म से रिलेटेड, एक बार जयंती बहन ने सुनाया, उस समय तो काफी यंग थे और जानकी दादी के साथ पांडव भवन में ही किसी प्रोग्राम के लिए में दोनों साथ में एक ही रूम में ठहरे हुए थे। अभी वो तो काफी छोटे थे और सब दादियां बड़ी बड़ी थी, तो कुछ एक स्नेह मिलन था दादियों का, तो जानकी दादी उस स्नेह मिलन में चले गई और वो बहुत ऑनेस्टली सुनाती कि ये सारी दादियां जब स्नेह मिलन कर रही थी, जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, सब दादियां, तो इधर उनको अपनी सेवाओं में भी बिजी थे, पर कई बार वो हमको अंदर में दिल होती है ना कि वो जो कर रहे हैं हम भी वहां जाएं, हमको भी चांस मिले, क्या कर रहे हैं, दादी लेकर क्यों नहीं गई, ले जा सकती थी, इस प्रकार के उनको मन में संकल्प भी चल रहे थे, वो सेवा भी कर रही थी और लंबा स्नेह मिलन था 12 से 3 बजे तक का दोपहर का। और दादी जानकी जब लौट करके आई तो कहा जयंती बहन को देख करके कहती है तुम्हारी दिल थी ना वहां पर आने की। तो उनको तो एकदम ऐसा लगा दादी को कैसे पता चल गया और थोड़े आंख भी भर आई क्योंकि इतने समय से तो व्यर्थ चल रहा था। तो दादी ने उनको एक बात कही कि जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हीं को मिलना है, जो आपका भाग्य है वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है, लेकिन जो आपका है ही नहीं वो आपको मिल ही नहीं सकता है। किसी भी चीज में बैठ करके ये नहीं सोचना कि ये मुझे मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, ऐसे नहीं होता है। जो मिलना है वो आप कहीं पर भी हो, गांव में हो, शहर में हो, किसी को आपका पता हो नहीं पता हो, अगर वो एनर्जी आपने भेजी है वो तो लौट करके आनी ही है। अपना एक गीत भी है ना बहुत सुंदर, समय से पहले भाग समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिला है कोई ना छीन पाया। छिनों को कर्मों की गोये गति बहुत अच्छे से पता है, वो किसी के पाठ को नहीं देखते, उन्हों के अंदर कभी भी तुलना का संस्कार नहीं होता है, उन्हों को कभी भी देख करके नहीं लग सकता है कि इन्हों को बहुत चांस मिल रहा है या ये चांस मुझे मिलना चाहिए था, नहीं, उन्हों को हर एक के पाठ को देख करके बहुत बहुत खुशी होगी। ये संकल्प करना कि उन्हों को मिला और मुझे नहीं मिला, ये तो अपने ही भाग्य को लकीर लगाने जैसा है। संकल्प से भाग्य बन रहा है ना, किसी के भाग्य को देख करके इन्हें मिला मुझे नहीं मिला तो ये तो अपने भाग्य को खराब करने जैसा है। इसलिए जिस जिस के पाठ को देखो खुश, और ही कितने सफल हैं, बहुत आगे बढ़े, बाबा इन्हों को और आगे बढ़ाए, और अपना भाग्य बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भावना है बहुत शुभ हो। बाबा को बहुत स्किलफुल टैलेंटेड बच्चे, बुद्धिवान बच्चे ऐसे नहीं चाहिए। बाबा अपना कार्य कौन से बच्चों से कराता है? सबसे मुख्य चीज क्या है जो बाबा देखता है? सच्ची दिल, सच्ची दिल, साफ दिल, इस बात को बहुत पकड़ के रखना है। मैं तो कई बार दादी जानकी को देखती तो मुझे लगता है विदेश की सेवा जब शुरू होनी थी कौन हम में से सोचेगा कि ऐसे जिनों को इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, एक भाषा सिंधी आती है, उसमें भी दादी की फॉर्मल एजुकेशन कहाँ तक है मालूम है आपको? फॉर्मल एजुकेशन दादी की कितनी है? थर्ड स्टैंडर्ड। कौन सोचेगा कि सारे विदेश के निमित्त हम दादी को बनाए, जिनों को दादी खुद कहती थी मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता था, परंतु बाबा को तो वो चाहिए था जो बुद्धि को भी समर्पित कर सके और बाबा उसकी बुद्धि से कार्य करा सके। बहुत बुद्धिवान से बाबा कार्य नहीं करा सकता है क्योंकि वो तो फिर अपनी बुद्धि यूज करता रहेगा। बाबा को तो वो चाहिए जो अपनी बुद्धि समर्पित कर सके कि बाबा उसके द्वारा कार्य करा सके। तो कोई बहुत स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए, आप किसी को भी पूछो यज्ञ में जिनों को बहुत स्किल है खाना बनाने की हो या किसी को, कहेंगे पता नहीं यहाँ आए आ गया। मैं कल एक पूछ रही थी भाई को, आप भट्टी में देख रहे होंगे बड़ा सुंदर सुंदर वो लोग नए नए प्रकार के भोजन खिला रहे हैं सबको अच्छा अच्छा, तो वो भाई मिला जो बनाता है। मैंने कहा ये सब आपने सीख करके आए थे? कहते नहीं सब यहाँ देखते देखते सीख लिए। तो कोई स्किल लेकर नहीं आता है, कोई टैलेंट लेकर के नहीं आता है, परंतु साफ दिल, सच्चे दिल, बाबा उसके द्वारा कार्य करा देता है। जानकी दादी ने एक तरह से सभा में पूछा था आप क्या बनना चाहते हैं, सेवाधारी, निमित्त की कठपुतली? दादी कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं ना, जानकी दादी ने कहा क्या बनना चाहते हैं, सेवाधारी, निमित्त की कठपुतली, क्या कहेंगे? तीनों ठीक
है,
कठपुतली किनों को लगता है, सेवाधारी, निमित्त बाबा तो रोज सुनो, निमित बनो, निमित भाव, निमित भाव। तो किसी ने कहा सेवाधारी, किसी ने कहा निमित, बहुत कम ने कहा कठपुतली, क्योंकि कठपुतली बनना तो मना, अपनी कोई सोच ही नहीं, बुद्धि ही नहीं। दादी ने कहा देखो निमित्त भी जो होता है ना कभी कभी, और एग्जाम्पल जो दिया चाकू का, कहा चाकू निमित्त होता है, परंतु बहुत शार्प हो ना तो कभी कभी उसको उस चीज का अभिमान भी आ जाता है। तो सबसे ऊंची स्टेज है कठपुतली बनना, क्योंकि कठपुतली को अगर आप देखो तो डोर अगर उसने खींच रखी जो उसको डांस कर रहा था, तो वो बहुत सुंदर लगता है। फिर नजर उसके ऊपर नहीं जाती है जो डोर खींच रहा है, किसके ऊपर जाती है? कठपुतली के ऊपर। और अगर वो डोर छोड़ दे फिर नहीं आप देख सकते, वो ऐसे करके बंद हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। जितना खूबसूरत जब तक डोर हाथ में लगता है, डोर छोड़ दे तो वो ऐसे पिचक जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो दादी ने कहा ऐसे हम बने, उसके हाथ में डोर है तो सारे विश्व की नजर हमारे ऊपर, और उसके हाथ में अगर डोर नहीं है तो किसी को दिखाई नहीं। इतने गुप्त हो जाए जो किसी को पता ही नहीं चले, लेकिन उसके हाथ में डोर है तो सबकी नजर हमारे ऊपर। पपेट शो चलता है ना, जिसको नहीं भी देखना होता वो भी रुक करके तो पूरी नजर पड़ जाती है। और वैसे भी बाबा ने तो खुद को डायरेक्टर बनाया है, हमको एक्टर बनाया है। डायरेक्टर की वो बहुत लोग नहीं पहचानते हैं, एक्टर को सब पहचानते हैं। कोई भी फिल्म भी होगी ना, डायरेक्टर को तो तब जाकर पूछेंगे अगर फिल्म अच्छी चलेंगे, लेकिन एक्टर के ऊपर तो सबकी नजर पड़ती है। परंतु दादी ने बहुत सुंदर बात कही, आप डायरेक्ट पपेट नहीं बन सकते, हर एक पहले सेवाधारी बनते हैं, फिर धीरे 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 निमित बनता है, फिर धीरे 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 पपेट बनता है। तो उतनी तो ताकत भी चाहिए अपने को समर्पित करने की, तन मन धन बुद्धि संकल्प सब बाबा आपका, आप करण करावन हार है, जो कराना है करा। ओम शांति।